अब इस राष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलन विधि द्वारा हम विधिवत उद्घाटन करेंगे। कहते हैं, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। ना होगा कुछ कोसने से अंधेरों को, ना होगा कुछ कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। मैं मंचासीन मेहमानों से अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलन के लिए दीप के समक्ष आएं, एवं सभा में भी जिन भाई बहनों को विशेष दीप प्रज्वलन विधि के लिए निमंत्रण किया दिया गया है वह भी मंच पर आएंगे। साथ ही हमारे कुछ समर्पित भाइयों को मैं आमंत्रित करती हूं, वह भी मंच पर आकर दीप प्रज्वलन विधि में साथ देंगे। देव भाई एकोमोडेशन डिपार्टमेंट, राजू भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दीपक भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सोमशेखर भाई, अरुणा बहन बड़ौदा से आप जो पधारे हैं, बिंदु बहन, इन सबको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मंचासीन मेहमानों को मैं कहती हूँ दीप के समक्ष आए, एवं जिनों का भी नाम लिया गया है वह भी मंच पर आए, और इसके अलावा भी जिन्हें विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया है दीप प्रज्वलन की विधि के लिए वह मंच पर आएंगे, इस विधि में साथ देंगे। क्योंकि आज रोशनी का सैलाब आया है, ज्योत से ज्योत जगाने का पैगाम लाया है। मैं आप सभी भाई बहनों से भी अनुरोध करूंगी अपने स्थान पर खड़े होकर इस दीप प्रज्वलन की विधि में साथ देंगे। हम सभी मिलकर पहले तीन बार ओम शांति शब्द का उच्चारण करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम दीप जलाएंगे। ये सुरक्षा के प्रति जागृति लाने का दीप है। हम सब मिलकर के एक ही स्वर में कहें, ओ शांति, ओ शांति। हमारे मेहमान दीप प्रज्वलन के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि का साथ देंगे। हम सब भी अपने अंदर विश्वास का दिया जलाएंगे, सुरक्षा की जागृति का दिया जलाएंगे। ये शुभ संकल्प अपने मन में धारण करेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है आत्म ज्योत को जगाने का। सारे विश्व में सुरक्षा के प्रति हमें सभी को जागृत करना है। मन में विश्वास का दिया जलाना है। ये बड़ा शुभ प्रसंग है। मिस बरखा गौर जी आरटीओ नीमच भोपाल, उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ। कितना खूबसूरत ये दृश्य है। हम सब अपने अंदर विश्वास जगा रहे हैं। मैं मेहमानों से अनुरोध करूंगी पुनः अपना स्थान ग्रहण करें, और आप सभी भाई बहनों से भी अनुरोध है अपने स्थान पर विराजित होंगे। हम सभी जानते हैं गति पर नियंत्रण और सुरक्षा की जागृति का आधार यह आध्यात्मिकता है और आज हम सब ने मिलकर यह आध्यात्मिकता की ज्योत को प्रज्वलित किया है। बहन बरखा गौर जी भी बहुत प्यार से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, हम सभी तालियों का साथ देंगे। आप सभी अपने स्थान पर विराजित हो जाएं और अब आज के इस इनॉग्रल एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करती हूं भ्राता राजीव गुप्ता जी को। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के आप चेयरमैन रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जॉइंट सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं, 1979 से आप रेलवे से जुड़े और भारत की अनेक सिटीज में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में बड़ौदा में आप डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे में कार्यरत हैं। आपके साथ आज सुबह कुछ क्षण बिताए और उस पल की मुलाकात में महसूस हुआ कि आप बहुत सरल व खुश मिजाजी स्वभाव के हैं। मैं राजीव गुप्ता जी को इनॉग्रल एड्रेस के लिए आमंत्रित करती हूं। हम सभी करतल ध्वनि से गुप्ता जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
आदरणीय दिव्या प्रभा बहन जी, कांति बहन जी, संगीता बहन जी, अरुणा बहन, अंगराज मोहन जी, शर्मा जी और अनिल जी, मेरे साथ आए हुए नेशनल एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री ब्रजेंद्र सिंह, मेरे साथी फैकल्टी वाले और सारे ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के सेक्टर से देश देश के कोने से आए हुए सभी भाई और बहनें जो आई हैं यहाँ पे, मुझे मैं देख रहा था ऑडियंस में, मैं दो तीन लोगों को पहचान रहा था। एक तो संजय जी हैं और एक साउथ सेंट्रल से आए हैं जिनको मैं पिछले महीने मिला था कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोगों ने पिछले एक घंटे में बहुत सारी बातें सुनी और उसमें बहुत सारी चीजें मैं भी कहना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि समय भी हो रहा है और उन बातों को ज्यादा दोहराने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि मैं तो फील्ड का आदमी हूं और मैंने अपनी जिंदगी जो है 17 साल में शुरू करी थी नौकरी जिसको बोलते हैं, और 79 से पहले 76 में ही मैं रेलवे में अप्रेंटिस में आ गया था। तो बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी हमें समझनी है। हालांकि जो आदरणीय निर्मला दीदी ने कहा या और भी बहनों ने जो बात कही या शर्मा जी ने कही, वो सब चीजें रेलेवेंट हैं और उनका अनुपालन अगर हम करें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक जिंदगी है वो शायद इतनी सरल नहीं है। जैसा कि हम बहुत सारे लोग जो रेलवे से जुड़े हुए हैं या रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं इस बात को। तो आज का जो थीम है स्पीड, सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों चीजों पे मैं विचार कर रहा था पिछले एक घंटे से कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो मैंने की नहीं है ना, मैं यूनिवर्सिटी गया हूं, तो वही मैं सोच रहा था कि इतना जो ये एटमॉस्फेयर है यहां पे, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या बात की जाए जो कुछ मतलब रखे। तो मैं यही सोच रहा था कि स्पिरिचुअलिटी का जो इसमें एक लिंक दिया गया है स्पीड और सेफ्टी के साथ, तो वो हमारे लिए जो हम लोग व्यवहारिक लोग हैं जो रोज इस सिस्टम से जूझते हैं और हर तरह का हमारा एक्सपीरियंस होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी का जो ये लिंक है इसको कैसे जोड़ें। तो वही मुझे लगा कि जैसे आज हम यहां पे हैं इस आश्रम में, ब्रह्म कुमारी मूवमेंट है, तो इसमें जो आधार है वो स्पिरिचुअलिटी का है। तो सब कुछ अच्छा है, हम लोग किचन में गए तो किचन साफ थी, कैंपस है वो साफ है, हरा भरा है, कमरे साफ सुथरे हैं, सब आरामदेह चीजें हैं, और आप आते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी और जगह आ गए, किसी और दुनिया में आ गए। तो आई थिंक दे हैव अ अनफेयर एडवांटेज और अस नॉर्मल पीपल, बिकॉज वी लिव इन द एक्चुअल वर्ल्ड विच इज फार रिमूव्ड फ्रॉम ऑल दिस यू नो एटमॉस्फेयर, एंड टू ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर यू नो थिंग्स आर चेंजिंग एवरी मोमेंट एंड एवरी डे, एंड टू डू इट 24 आवर्स अ डे, 365 डेज अ ईयर एंड ऑन एंड ऑन इज समथिंग दैट इज नॉट सो इजी। इट्स नॉट अबाउट ओनली टॉकिंग और इम्बाइबिंग, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ होल न्यू कल्चर। आई वॉज जस्ट थिंकिंग यू नो इफ यू लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन इंडिया एंड इफ यू एड द ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, एक्चुअली इट इज प्रॉब्ली बाई फार द लार्जेस्ट सेक्टर इफ यू लुक एट द contribution to services, contribution to manufacturing, and also probably one of the largest job generator in the country if you keep aside agriculture, which continues to be the mainstay because of our the way we are evolving as an economy, as a society. And often when we were young we were told that there is somebody upstairs who is running this world and he decides what happens. Maybe that is true, but I have not seen him. What I do see in this world is that actually the transport sector runs the real world. Today if the trains were to stop and the planes would not fly, or the metro would stop, or there is a breach on the road and your trucks don't ply and your buses suddenly stop, your life will suddenly come to a halt as we know it. Yes, maybe it's really peaceful, but then who wants peace on a daily basis or on a regular basis? You want excitement, you want movement, and that is what life is all about. So now one, I would want to start with the most difficult item, and that is spirituality. Because being an engineer, being a practical person, you know, who is involved in day-to-day stuff, it's a little difficult to really go down to the core of this word, spirituality. Spirit, maybe in English. Hindi mein adhyatma bolte hain. Ab adhyatma ka main soch raha tha, main itna gyata to nahi hoon Hindi ka. या संस्कृत का अध्यात्म से शायद जुड़ा हुआ है, शायद आत्मा जुड़ी हुई है, शायद अध्ययन जुड़ा हुआ है, कुछ आइडिया है? तो वही मैं सोच रहा था। तो ये सब चीजें जो हैं कहां से आएंगी, कहां से स्पिरिचुअलिटी जुड़ेगी आपके? वो शायद आपके माता पिता देंगे आपको, जब आप बचपन में उनके साथ रहते हैं, या स्कूल में जब आप पढ़ते हैं, या कॉलेज जाते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या ट्रैवल सेक्टर है, जो आज की शेप है उसकी, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने अपने आप क्रिएट की है। हमने तो इसको कॉपी और पेस्ट मोड में باہر سے لیا ہے، اس کے جو ویلیوز ہیں اور اس کے جو سسٹمز ہیں اور اس کا جو پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ باہر سے آیا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ گروکل بنا لیجئے، آشرم بنا لیجئے، تو وہ یہاں کی دھرتی سے جڑا ہوا ہے. ٹرانسپورٹ یہاں کی دین نہیں ہے جو آج کی ٹرانسپورٹ ہے. پرانے زمانے میں پالکی تھا، کہار تھی، کیوٹ تھا، ہاتھی تھا، گھوڑا تھا، اور شاید ایراوت بھی تھا اور اڑنگ کھٹولا بھی تھا. اب پتہ نہیں کب تھا کیا تھا. آج کی ڈیٹ میں تو جو آپ کی ٹرین ہے یا آپ کا جہاز ہے یا جو آپ کا پانی کا جہاز ہے یا کشتی ہے یا میٹرو ہے، سائیکل ہے، رکشہ ہے، آٹو ہے، یہ سب جو ہے باہر کی دین ہے اور ہم نے اس کو کاپی پیسٹ موڈ میں اپنی زندگی میں لگا دیا. تو اس کو جو ہے کس طرح سے اپنی جو ہماری جو خود کی جو کلچر ہے یا خود کا جو ہماری ویلیو سسٹم ہے اس کو کیسے جوڑیں. اب گروکل میں یا آشرم میں جو آپس میں جس طرح سے لوگ پیش آتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے. اب میں آیا یہاں پہ صبح، تو صبح تھوڑی نیند میری جلدی کھل گئی، ٹرین میں شنٹنگ ہو رہی تھی، تو آتے ہی مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں سو گیا. لیکن جو ریئل ورلڈ ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. وہاں اسپیشلی کیونکہ ایک ہم نے باہر کی ٹیکنالوجی کو اپنی لائف میں اتنا زیادہ ایمبیڈ کر لیا ہے کہ اب اس کے ساتھ جوجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی فرق ہیں. اب باس جو ہے آپ سے گراتا ہے، اور گروکل میں جو ہے جو آپ کو اسپرچویلٹی سکھاتا ہے وہ شاید آپ سے آرام سے بات کرتا ہے. شاید آشرم میں آپ آئیں گے تو لوگ آپ سے بہت دھیان رکھیں گے. میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ دھیان رکھ رہے ہیں کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہ آپ آرام سے ہیں کہ نہیں، سو جائیے، آرام کر لیجئے. لیکن جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، اٹ از اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ، مشکل جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر ہر سمے کسی کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے اور ہر سمے چلنا ہے، 24 گھنٹے چلنا ہے. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ بدلاؤ لائیں، ان کی سوچ میں بدلاؤ لائیں، ان کے وچاروں میں کچھ اچھا پن کریٹ کریں اور ان کا جو اندر آتما ہے اس میں کچھ ایسی چیز ڈال دیں کہ وہ جو ہے سب جو ہے کوشش کریں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے کریں، جس سے سرکشا بھی رہے اور جس سے کہ گتی بھی بڑھے. جو آج کا جو یوگ ہے وہ گتی پہ چل رہا ہے، ہر چیز جلدی چاہیے، ابھی چاہیے اور ایسے ہی چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، 2-2, 4-4 کروڑ کی گاڑیاں خریدتے ہیں، کیونکہ وہ بہت تیز بھاگتی ہیں، بہت آرام سے چلتی ہیں، اس میں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا. آپ نے سنا ہے کہ ہائی اسپیڈ ٹرین آنے والی ہے احمدآباد سے بمبے، 350 کلو میٹر کی اسپیڈ چلے گی. ریلوے میں لوگ آج کل چلنے میں کتراتے ہیں کہ اتنے ہی پیسے میں لوگ ایئر سے چلے جاتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، صاف ستھرے واتاورن میں جاتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں. اب جیسے دو جو یہ سیکٹرز ہیں جن کے لیے پرائمریلی یہ کانفرنس ہے، جو قریب 400 لوگ جڑے ہیں اس کانفرنس سے، اس میں مینلی وی آر لوکنگ ایٹ دا روڈ اینڈ دا ریل سیکٹر. اب یہ دونوں ہی جو سیکٹرز ہیں ایسے سیکٹرز ہیں جس میں کہ شاید اس دیش کا کوئی بھی پرانی ایسا ہے جو نہ جڑا ہو، سبھی جڑے ہوئے ہیں اس سے. اور ہمارے جو دیش ہے اس میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، چاہے کلچر کی ہو، چاہے لینگویج کی ہو، چاہے انکم کی ہو. ہاں، انکم ڈسپیرٹیز آر گروئنگ، سو دی ایکسپیکٹیشن آف ایوری بڈی از ڈفرنٹ. ایک ہمارے یہاں سیکنڈ کلاس جنرل ہے، اس میں جو ہے جیسے انگلش میں بولتے ہیں پیپل آر پیکڈ لائک سارڈینز ان اے ٹن. شاید 150 کی جگہ ہے، اس میں 300 چلتے ہیں، 350 بھی چلتے ہیں، اور چلتے ہیں کیونکہ شاید سستا ہے اور شاید یہ لگتا ہے کہ یہاں چڑھو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے ٹائم سے. حالانکہ گرمی بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، اور دوسرے اینڈ پہ آپ کے پاس فرسٹ اے سی بھی ہے، اے سی ٹریول بھی ہے، دلی کی میٹرو بھی ہے اور لگژری بسز بھی ہیں، وولوو بسز بھی ہیں اور بڑھیا بڑھیا کاریں بھی ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں ہارلی ڈیوڈسن کی موٹر بائکس ہیں، بڑھیا بڑھیا سائیکلیں آتی ہیں، جو 20-20 ہزار کی سائیکل آتی ہے، तो बहुत हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारे समझिए कस्टमर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एक माइग्रेंट लेबर से लेकर के शायद देश का सबसे जो अमीर नागरिक है वो भी, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रोड हो चाहे वो रेल हो। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम ये सब चीजें ला सकें, एक साथ हम जोड़ सकें स्पीड को सुरक्षा से। अब रेलवे है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इट इज द सेफेस्ट मोड। अगर हम आंकड़े निकालते हैं नंबर ऑफ कैजुअलिटीज पर मिलियन किलोमीटर्स, वो कुछ दशमलव में आता है, छोटा सा दशमलव आता है, फ्रैक्शन आता है। लेकिन जिसका भाई या बहन या माता या पिता चला जाता है एक्सीडेंट में, उसको उस दशमलव से मतलब नहीं है। या रोड है, पिछले 20 साल में बहुत प्रगति हुई है रोड की, लाखों किलोमीटर बन गए, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे हैं। और क्योंकि गति बढ़ रही है तो जो एक्सीडेंट होता है उसमें कई बार बचने का कोई सवाल ही नहीं होता। सर, चाइना और इंडिया शायद ऐसे दो देश हैं जहां पे बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट कैजुअलिटीज हैं। और इंडिया में हालांकि हमारी सरकार कोशिश कर रही है लेकिन शायद बहुत अभी हमें इसमें प्रगति नहीं हो पा रही है। और रेलवे में भी अगर आप आंकड़े देखेंगे आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक्सीडेंट अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते। और अब चैलेंज क्या है कि गतिमान चल रही है, तेजस चल रही है और आपका हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेसवेज हैं रोड में वो आ रहे हैं, तो किस तरह से हम ऐसा कल्चर क्रिएट करें, इक्वालिटी कल्चर क्रिएट करें जिसमें कि लोग जो हैं दे कैन ट्रैवल एट हायर स्पीड्स विद सेफ्टी। नाउ आई डू बिलीव, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ फॉर द लास्ट वन आवर हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन कम एंड हेल्प अस इन दिस। सो इट्स नॉट, आई मीन आई डोंट रियली हैव अ सोल्यूशन और अ प्रिस्क्रिप्शन। यस, थिंग्स प्रॉब्ली हैव टू स्टार्ट एट होम एंड स्कूल एंड कॉलेज, बट देन वी इन द ट्रैवल एंड द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ऑन दैट। नाउ देयर आर सो मेनी जॉब सीकर्स एंड द जॉब्स आर सो फ्यू इन द फॉर्मल सेक्टर, द रोड एंड रेल सेक्टर, प्राइमरली द रेल इज द फॉर्मल सेक्टर, रेस्ट इज लार्जली इनफॉर्मल। ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू वुड नो that we carry only about 30-35% of the freight in the rail sector of the national transport requirement of freight, and we only do about 15-20% of the passenger. So 80% of the passenger traffic and 70% around is actually in the informal sector, largely one truck companies, two bus companies, state road transport corporations, and you have these red buses and you have these Volvos also, but how many can afford them and how many services do they actually run? So, and I was reading somewhere that for 30-40,000 jobs in the railways 1 crore people apply. जब हम विदेश की बात करते हैं तो शायद जो आदमी टोक्यो मेट्रो चलाता है या न्यूयॉर्क मेट्रो चलाता है, जो मोटरमैन है वो चाहता है बनना मोटरमैन, या वो रेलवे इंजीनियर बनना चाहता है। हमारे यहां इस तरह की हमारी लग्जरी नहीं है, जिसको जो नौकरी मिलती है वो ले लेता है, चाहे उसकी रुचि है या नहीं है। ये सब समस्याएं हैं और शायद इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर उसकी रुचि नहीं भी है, अगर उसका नंबर आता है तो वो आ जाता है। अब उसका जो लाइफ में ध्येय है वो शायद रेलवे में काम करना नहीं है, उसका ध्येय कहीं और है, लेकिन उसको गुजर बसर करने के लिए रेलवे नौकरी करनी पड़ती है, या ट्रक ड्राइविंग करनी पड़ती है, या लग्जरी बस चलानी पड़ती है, या स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में उसको कंडक्टर की नौकरी या ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है। उसका वहां ध्यान शायद नहीं है, उसका घर में ध्यान है, उसका शायद कुछ और चीज में ध्यान है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हमारे सामने है। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में मैं समझता हूं कि पिछले 150 सालों में बहुत चेंज आ गया। पहले बहुत दमनकारी नीति थी मैनेजमेंट की, कॉलोनियल टाइम्स में, इवन अर्ली जो इंडिपेंडेंस का पीरियड था, हमारा प्रशासन बहुत रिजिड था, सुनवाई नहीं थी। ट्रेड यूनियंस का राइज हुआ, मैनेजमेंट में मॉडरेशन हुआ, बहुत सारी चीजें सुनने जाने लगी, कई इंक्वायरी कमीशन बैठी स्पेशली एक्सीडेंट के संबंध में, और धीरे धीरे बदलाव आया। यह कहा गया कि साहब ड्राइवर जो है 10 घंटे से ज्यादा उसको आप नहीं चलाइए, क्योंकि 7, 12, 14 घंटे आप बता दीजिएगा मुझे जब बंद करना है। तो 12-14 घंटे, पहले लोग 20-20 घंटे चलते थे, तो अब उसका रिस्ट्रिक्शन आया कि 10 घंटे चलाएंगे। रनिंग रूम्स में बदलाव आया, मैं आज ही गया जब सुबह आया तो माउंट आबू रोड का मेरे रनिंग रूम देखा। हमारे जमाने में शायद अफसरों के भी ऐसी अकोमोडेशन नहीं थी जब हमने नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनकी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, तो कोई अचंभा नहीं है कि ऐसा है। अब रोड में मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं है कि जहां ड्राइवर्स के लिए प्रॉपर रेस्टरूम्स हों, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने को सुधारें, कोई रिफ्रेशर कोर्स हो, या कहीं एक ऐसा फोरम हो जहां पे पुलिस उनकी सुन सके, या पुलिस सुनना चाहे, या आरटीओ सुनना चाहे, या रोड जो मेंटेन करता है इंजीनियर वो उसकी सुने। कहीं कनेक्ट नहीं है उस रोड ड्राइवर से, और वो रोड का जो ड्राइवर है वो आपका 80% पैसेंजर और 70% फ्रेट चला रहा है, और शायद ऊपर वाले के भरोसे ही चला रहा है, क्योंकि रोड्स का आप स्थिति जानते ही हैं। हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन शायद जितना होना चाहिए वो शायद अभी उसमें कुछ कमी है। तो अब यही है कि मुझे लगता है कि जो ये स्पिरिचुअलिटी वाला जो एलिमेंट है, इट कैन ओनली कम फ्रॉम ट्रेनिंग। मे बी वी कैन स्टार्ट इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जैसे मेडिटेशन का जो जरिया है, ये मीडियम है, ये इट इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम, बट देन इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आदमी को विलिंग होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए उसके इसके लिए समय है, और वो अपने आप को इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको करे, क्योंकि ये चीज एक साधना है जिसमें कि अगर आप सोचते हैं कि एक दिन मेडिटेशन कर लिया और महीना भर काम चल जाएगा तो शायद नहीं हो पाएगा।
भ्राता राजीव गुप्ता जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियों के द्वारा। मैं समझती हूँ आप काफी देर से बैठे बैठे थक तो नहीं गए। हाँ, थक तो नहीं गए, हाथ ऊंचा करके हमें बता दें। हाँ, चलो 2 मिनट एक काम करते हैं, हम थोड़ा बंटवारा कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए बंटवारा करते हैं, सारी दुनिया को हम बांट लेते हैं। समुद्र आपका, लहरें हमारी, हाँ मंजूर हो तो हाथ खड़ा करते जाना। समुद्र आपका, लहरें हमारी, आसमां आपका, जमी हमारी, आसमां आपका, जमी हमारी, नदी आपकी, पहाड़ हमारा। चलो ऐसा करते हैं, सब कुछ आपका पर आप हमारे, मंजूर है? और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भ्राता सुरेश प्रभु जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके दिल में अति चाहना थी इस कॉन्फ्रेंस में आने की, पर अपनी अति व्यस्तता होने के कारण आप इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच नहीं सके, लेकिन अपनी शुभकामना संदेश हम सभी के लिए आपने व्यक्त की है। बहुत समय से भ्राता सुरेश प्रभु ब्रह्मा कुमारी से परिचित हैं और बहुत बार उनका यहां आने का प्रयास भी रहा, लेकिन व्यस्तता के कारण वो पहुंच नहीं सके। इस बार भी हमारे दिल्ली से पधारे मोतीलाल भाई, मोतीलाल भाई एक मिनट खड़े हो जाइए, मोतीलाल भाई जिनके प्रयास से उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना वीडियो के माध्यम से संदेश हम सब तक पहुंचाया। ऐसे ही साथ में भ्राता जय कुमार रावल जी, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वह भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे नहीं सके, लेकिन उन्होंने भी अपने शुभकामना संदेश हम तक पहुंचाई है। हमारे गोरेगांव के प्रमोद भाई भी इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन उनके प्रयास से उनका भी शुभकामना संदेश वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचा है। तो हम पहले भ्राता सुरेश प्रभु जी का वीडियो संदेश सुनेंगे और उसके पश्चात जय कुमार रावल जी का भी संदेश सुनेंगे।
आई एम वेरी हैप्पी दैट ब्रह्म कुमारी इज गोइंग टू कंडक्ट लॉन्ग मेडिटेशन कैंप। यू हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम अ लिविंग ह्यूमन बीइंग स्पेंड्स हिज लिविंग टाइम by looking at others, sometimes admiring others' beauty, and most of the time criticizing others' faults. And therefore our time is lost in understanding others, or time to look at others, not even understanding really, because we don't have time to understand him, but just form opinions about others, and we never give time to ourselves. The purpose of life, every being, human being, is born with a purpose, and everybody's living purpose is different than the rest of the people. If every human being had the same purpose for which he was born, then nature wouldn't have created so many people. So each individual is born with a unique purpose of his life, the unique reason for his existence. And if you don't know that, probably we are wasting our time on the planet looking at others, not looking at ourselves. And if I want to know what is the purpose of my life, only person who can know it is me. Nobody else can know. Why I am born, only I can know. And if I want to know, how do I know that? How can I know it? Can I read book and know it? The book is written by somebody else. So he has written the book knowing himself. So he has done his job. Reading the book, I can know him, not me. So how do I learn about myself? And that's a big beginning of an inquiry into myself. What I will discover is something different. I need to first start an inquiry about why I am here, and that inquiry is meditation. I must look into myself, try to bring in tandem my soul and mind and body at the same time, and try to introspect, evaluate, understand myself. And that's the beginning of a process of inquiry which will lead me to knowing something more about myself. Then I can follow my path. If I know what I am, what is the purpose of my born, then I can pursue that path. I don't know it myself, so and therefore I am following something which my father has told me, my friend has told me, my neighbor has told me. I am doing it. But I am not doing something which I wanted to do, for which I was born. And that's what the inquiry will start with meditation. If I know it, then I can pursue that path. Gautam Buddha discovered it after several decades of meditation. So meditation is not an easy path. That you start today at 11:40 and 11:41 you are looking at a watch and see nothing has happened. I wasted my 1 minute. Meditation is a process which can give enlightenment tomorrow or maybe never. But never means it's also you have reached a stage wherein you are not discovered, but your soul might have discovered something which they needed to discover. So you must start the art of meditation by finding out what you are And that's what Brahma Kumaris teach you. One of the great art of Brahma Kumaris meditation, unlike others, is that you do meditation with open eyes. I don't know why, but probably open eyes might open your mind better. Don't close your eyes so that you don't think about something. You concentrate on one light that comes. That's how the Brahma Kumaris teach you meditation. I'm very happy that this camp, which is going to happen, will lead us to some enlightenment, beginning of a process, beginning of a long road, which will end, no one knows when. But even if you start walking on the road, is a beginning of a process of realizing your own self. I wish you all the best, and I wish I was there myself. But Brahma Kumaris are doing a splendid job, and they will be definitely guiding you better. Dhanyavaad.
ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल पे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इस कार्यक्रम में सभी ट्रांसपोर्ट ट्रैवल जो टूरिज्म का अविभाज्य अंग है उससे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। ओम शांति। आज पर्यटन क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे विभाग के माध्यम से सभी को प्रवास करना है और प्रवास का आनंद लेना है, लेकिन प्रवास करते समय सभी को जल्दी है और स्पीड और सेफ्टी, ये दोनों के बीच में एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध होता है कि अगर आपको सेफ्टी छोड़ देनी है तो स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ानी है तो सेफ्टी छोड़नी पड़ेगी। और इसीलिए ये दोनों अगर साथ में चलना है तो सबसे जरूरी है कि अपना दिमाग, अपना मन ये शांत रहे, पीसफुल रहे, तो ये हो सकता है। और ये पीसफुल मन रखने का काम अगर कहीं होता है तो इस विद्यालय में होता है, इस विश्वविद्यालय में होता है जहां हमें स्पिरिचुअलिटी मिलती है। और इसीलिए हम लोग सब लोग इसी पे आए, विचार मंथन चिंतन हम लोग सब लोग करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से मन भी इतना स्पीड से भागता है, बहुत तेजी से मन चला जाता है। अभी एक सेकंड में आप पहुंच जाओगे फ्रांस, जापान, अपने घर, अपने गांव। मन बड़ा विचलित है, वो पहुंच जाते हैं। जो आधुनिक जीवन है, जो तनावग्रस्त जीवन है, जो वेगवान जीवन है, जो इंटरनेट वाला जीवन है, उन सब में सबसे आखिरी और सबसे जरूरी ये चीज है कि स्पिरिचुअलिटी। और इसीलिए हमारे इसमें हम लोग हमेशा उसको आखिरी समझते हैं। मैंने भी आखिरी जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी का विषय होना चाहिए। जो जो चलाने वाला है उसका मन अगर स्थिर और शांत रहे, स्पिरिचुअल रहे, तो बड़े जिम्मेदारी से अपने काम को बखूबी से निभा सकते हैं। और वो काम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए सभी चीजों का चिंतन मंथन करते समय सबसे पहले हमारे मन के और हमारे जीवन के स्पीड को स्पिरिचुअली हम लोग कंट्रोल करेंगे तो न्यूट्रली हम लोग सोचेंगे और ठीक सोच के जो निर्णय लेंगे उसका निर्णय का अंत ठीक होगा। ठीक मानसिक परिस्थिति में अगर हम लोग काम करेंगे तो उसका अंत ठीक होगा, ये मेरा कहना है। और इसीलिए मैं आप सबको आज के इस मीट के लिए महाराष्ट्र का पर्यटन मंत्री के नाते से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ से बड़े विषय का चिंतन मंथन होगा, गहन चिंतन मंथन से कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे उपयोगी सुझाव ये हमको सबको मिलेंगे। लेकिन सुझाव सिर्फ कान में या मन में लेके नहीं चलेगा, तो उसको कार्यान्वित करने का काम हमारे दैनंदिन जीवन में हमने करना चाहिए। ये ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत हृदय से, हृदय के अंतकरण से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने कॉन्फ्रेंस ली, वैसे तो हर क्षेत्र में कॉन्फ्रेंस लेते रहते, समाज के हर वर्गों को वो लोग बुलाते, समझाते और उनको अच्छे मार्ग दिखाने का काम करते। संस्था को मैं नमन करता हूँ, सभी दीदियों को, सभी भाइयों को मैं हृदय के अंतकरण से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। मुझे आपने बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर विचार थे हमारे दोनों भाइयों के और हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि दूर बैठे भी उन्होंने अपने दिल की तरंगे शुभ भावनाओं के रूप में हम सभी तक पहुंचाई। हम एक बार करतल ध्वनि से उन दोनों भाइयों का धन्यवाद अदा करते हैं और अब अपने दिल की शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करती हूं सीपीओ नॉर्दर्न रेलवेज दिल्ली से पधारे भ्राता अंगराज मोहन जी को। रेलवेज वीक के दौरान दो बार आपको जीएम अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका स्वागत करते हैं और अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित करते हैं।
ओम शांति। आदरणीय श्री राजीव गुप्ता जी, डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, मैडम गुप्ता, मंच पर उपस्थित बहन दिव्य प्रभा, भाई सुरेश जी, भाई अनिल जी, बहन कुंती तथा बहन संगीता तथा इस सभागृह में उपस्थित सभी सज्जनों देवियों, स्पीड सेफ्टी और स्पिरिचुअलिटी, ना हम स्पीड रोक सकते हैं ना सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। स्पीड आप देखे होंगे, जैसा कि राजीव गुप्ता सर ने बताया कि डिमांड है जो अभी बहुत हाल में इंट्रोड्यूस होने जा रही है, बुलेट ट्रेन प्लस जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है इसके लिए आप देखे होंगे कि हमें बराबर डिमांड आती है कि इसके स्पीड को बढ़ाया जाए। इसमें जो एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान जो हम जाते हैं इसमें समय कम लगे, लेकिन इस स्पीड के बढ़ाने के भागदौड़ में हम सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर हमारे कस्टमर्स हमारे पास नहीं आएंगे। तो सेफ्टी इज द प्राइम थिंग, इट इज आवर कमिटमेंट, इट इज आवर वी आर वेडेड टू इट, टू द सेफ्टी। लेकिन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज क्यों होती है? सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है कई कारण से। कुछ कारण होते हैं एक्सटर्नल, कुछ होते हैं इंटरनल। जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट आपके वजह, आपके कमी से, काम के कमी से या आपके गलती के वजह से हो। एक्सीडेंट बहुत बार दूसरों की गलती से होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं, जिसके पहले जो स्पीकर्स ने कई कारण बताए हैं कि कुछ हमारे पर्सनल हैबिट होते हैं, चेंजिंग टेक्नोलॉजी होती है, हमारी इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग होती है। सर गुप्ता ने बताया कि कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ जाते हैं, शायद उन्हें वो जॉब पसंद नहीं होता, लाचारी में जॉब करते हैं, फिर हार्ट एंड सोल अगर जॉब में नहीं है तो फिर आप जो है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो इन सारी बातों को हमें देखना है कि सेफ्टी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज होती है और इसे हम कैसे इसको इससे जो है बाहर निकलेंगे। मेरे ख्याल से जो सेफ्टी से निकलने की जो एक स्थिति है, क्योंकि हमने देखा है कि पास्ट में कई बार इस तरह के कदम उठाए गए हैं कि ड्राइवर्स जो है, ड्राइवर्स हो चाहे हमारे स्टेशन मास्टर हो या गार्ड्स हो या और भी जो डायरेक्टली ट्रेन रनिंग से रिलेटेड रहते हैं, वो जो है किसी तरह की गलती नहीं करें, उनके लिए हमने डिसिप्लिनरी अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं, उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं, काउंसिलिंग करते हैं। कुछ हद तक जरूर सफलता मिलती है लेकिन इसमें परेशानी बनी रहती है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी इज वन श्योर वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस, बिकॉज इसमें जो है वो आदमी के आत्मा में हम अपील करते हैं कि आप ये काम करो, आप ये काम नहीं करो। उसके दिमाग को हम बदलते हैं, उसके परेशानियों को समझते हैं और उस भाषा में बोलते हैं जिससे कि उसको समझे कि हम उसके परेशानी के साथ, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म होता है एम्पथाइज करना, हम एम्पथी दिखाते हैं, हम ये देखते हैं कि हम आपके पार्ट हैं और आप जो है इससे क्यों निकले। जैसा कि आज जो फर्स्ट सेशन में हो रहा था, जो बहुत प्राइम बातें बताई जा रही थी कि जो किस समय किस वक्त हमें क्या सोचना चाहिए और फिर उसे अगर और किस चीज को सोचना चाहिए, किस चीज को नहीं सोचना चाहिए। जब भी हम लोग कभी जाते हैं इसमें फुट प्लेट इंस्पेक्शन में, ड्राइवर से पूछते हैं, हम पूछते हैं कि आप कभी कभी एब्सेंट माइंडेड क्यों हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है कि सर हमें चिंता रहती है कि बारिश हो रही है, हमारा रूफ लीकेज हो रहा होगा। सर हमें चिंता रहती है कि हमारा लड़का घर से नहीं आया होगा। अब ये बात बताने वाला ड्राइवर को कोई नहीं है कि आप जब इस पोजीशन में हो तो कृपया इस बात को आप स्टोन वॉल कर दीजिए, आप इसको मत सोचिए। तो ये जरूरी है, ये चीज इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है हमारे रनिंग स्टाफ को, हमारे जो ट्रेन रनिंग से जो रिलेटेड स्टाफ है उनको, थ्रू द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रेलवेज में देर हैव बीन अटेम्प्ट्स इन द पास्ट कि इस तरह का चीज करें, जैसे रनिंग रूम में हम लोगों ने योगा सेंटर का योगा रूम के लिए किया, मेडिटेशन रूम किया, प्रेयर रूम किया, ट्रेनिंग सेंटर्स में जैसा सर जानते होंगे और इनके देखरेख में भी होता है, जितने भी हमारे नीचे के सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, खास करके जो हमारे ट्रेन रनिंग स्टाफ है, उनके लिए योगा पर आजकल लेक्चर दी जाती है। जरूरत है कि इस सब्जेक्ट के कंटेंट को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा बात उन लोगों को बताया जाए और ताकि इसका लाभ ये सब ले सकें। हमें यहां पर इसके लिए गुड विशेस देने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए बुलाया गया है। मैं दिल से ब्रह्म कुमारी संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है आप लोगों ने यहां पर रोड सेक्टर और रेल सेक्टर के दोनों अधिकारियों कर्मचारियों को साथ लाया। एक इसका लाभ होगा कि दोनों सेक्टर के लोग जब बात करेंगे तो कुछ थॉट शेयरिंग्स होगी और इसका कुछ डिविडेंड जो है हमारे कर्मचारियों को मिलेगा और इससे हमारी चेतना बनेगी कि हम किस तरह से थ्रू द स्पिरिचुअलिटी मीडियम्स के स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम अपने स्टाफ को मेंटल स्टेज पर चेंज करें ताकि जब वो ड्यूटी करते हैं तो 100% डिवोटेड टू ड्यूटी रहें। इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम अपने सभी प्रतिभागी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे 4 से 5 दिन में जो डिस्कशन होगा ये काफी हम दोनों संस्थाओं के लिए, दोनों सेक्टर्स के लिए लाभदायक होगा और ज्यादा से ज्यादा हम स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अपने स्टाफ को चेंज करेंगे। थैंक यू एंड गुड विशेस वंस अगेन।
बहुत बहुत आभार भ्राता अंगराज मोहन जी आपका। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। मैं अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए अनिल भाई जी को आमंत्रित करती हूं। आप मुंबई से पधारे हैं और करीब 44 वर्षों से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और इस प्रभाग की सेवाओं में आपका विशेष योगदान रहता है। खास सभी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूं और इसके पश्चात आप सभी भाई बहने यहां पर ही बैठे रहेंगे। आप सभी को ईश्वरीय सौगात भी यहां से प्रदान की जाएगी। तो मैं अनिल भाई से अनुरोध करती हूं आभार प्रदर्शन के लिए।
ओम शांति। मुझे ये आभार व्यक्त करने के लिए बताया गया है। मैं सर्वप्रथम प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव का और हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा का, के जो परमात्मा के माध्यम बने और जिनके द्वारा ये संस्था की स्थापना हुई और एक सत्युगी देवी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बने, साथ में हमारी तपस्विनी त्यागी और सेवामयी दादिया को भी मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि जिन्होंने अपने बीज डाला है सेवा के और आज वटवृक्ष बन गया है ब्रह्म कुमारी संस्था। तो तहे दिल से बड़े प्यार से स्नेह भाव से सम्मान भाव से मैं दादियों का भी सम्मान करूंगा, साथ में हमारी ब्रह्म कुमारी जो बहनें हैं दीदियां हैं जिन्होंने भी अपना तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प संपत्ति सब कुछ न्योछावर किया है। इसमें हमारी निर्मला दीदी दिव्या दीदी जो आज भी हमारे समक्ष सेवा में उपस्थित है, तो करतल ध्वनि से आप सब उनका भी जरूर अभिवादन करेंगे और करतल ध्वनि करते रहिए। जिन जिन आत्माओं के लिए मैं कुछ विशेषता के रूप में बोलूंगा तो अपने मधुरवाणी ग्रुप का जिन्होंने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, बड़े दिल के उमंग उत्साह से प्रस्तुत किए बोल को हम खुशनुमा जीवन के रूप में प्रकट किया, इसलिए मधुरवाणी ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ में हमारी कुंती बहन ने बहुत ही सुंदर रीति से हर आत्मा के लिए विशेष मंच के उपस्थित को अपनी सुंदर गुण और विशेषताओं की माला पहनाई और माला पहना के स्वागत किया, हम भी उनके तह दिल से अभिवादन करके अभिनंदन करके उनको भी हम स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर रीति से उन्होंने अपना स्वागत की वाणी वक्तृत्व के रूप में प्रस्तुत की। साथ में हमारे सुरेश शर्मा जी जो मेरे प्रिय अनुज हैं, बहुत ही उमंग उत्साह से हर प्रकार की सेवा करते हैं और विशेष रोडवेज और रेलवेज के हेडक्वार्टर के रूप में सारे ही संचालन करते हैं, गेस्ट को आने जाने का प्रबंध करते हैं। और सुरेश भाई ने अपनी बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा के सशक्तिकरण द्वारा जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, संबंधों में रास्ता भी ला सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के द्वारा, और बहुत कुछ सुंदर बातें बताई हैं। मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ में हमारी अति आदरणीय दिव्या दीदी ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि आजकल खाली सेफ्टी नहीं चाहिए, तो संबंधों में भी सेफ्टी की आवश्यकता है। बहुत अहम बात बताई, और वो सिर्फ मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और दिव्या दीदी में बहुत कुछ कलाएं हैं, न सिर्फ उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट विंग की सेवा की है, मेरे हिसाब से आर्ट एंड कल्चर विंग की भी बहुत सुंदर सेवाएं की है उन्होंने, गीत प्रस्तुति की है, बहुत कुछ उन्होंने एक नित नवीनतम सेवा के प्रयोग किए हैं। मैं दिव्या दीदी का भी बहुत हृदय से शुक्रिया करता हूं, जिनके लीडरशिप में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमारी परम आदरणीय निर्मला दीदी, जिनका स्वभाव भी एक निर्मल है, उसका वक्तव्य भी बहुत निर्मल है, वो हमेशा उनके आशीर्वचन इतने सुंदर थे आपके लिए कि आप चंद भाग्यशाली आत्मा हो जो इस परमात्मा की भूमि में आ चुके हैं, और सदा सौभाग्यशाली बनकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना और अपना महासौभाग्य परमात्मा के द्वारा प्राप्त करके जाना। ऐसे आशीर्वचन देने के लिए मैं निर्मला दीदी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इसके बाद हमारे सुरेश प्रभु जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे से, उन्होंने एक छोटी बात बताई कि पर्पस ऑफ लाइफ, तो यहां आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा, हम कौन है उसकी पहली हल हो जाएंगी। उसने बहुत अच्छी बात बताई कि ओपन आइस मेडिटेशन है, ये ओपन द माइंड्स करते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा ओपनिंग डोर्स विथ इन, अंतर के द्वार उघड़ करके परमात्मा की याद से दिव्य शक्ति आप प्राप्त करो। हम सुरेश प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसी प्रकार ऑनरेबल श्री जय कुमार रावल जी ने भी बहुत सुंदर बताई बातें बताई। उन्होंने भी बताया कि जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है, और बहुत दिल से हमारी कार्यक्रम की शुभेच्छाएं प्रदान की। मैं ऑनरेबल श्री जय कुमार रावल जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे विशेष मेन चीफ गेस्ट जो भी आज इनॉगरल एड्रेस किया है, ब्रदर राजीव गुप्ता, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नायर। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आज 1.5 मिलियन जो रेलवे के कर्मचारी है एक परिवार के रूप में है, और वो चलाने के लिए ऊपर वाला की ही मेहनत से चलता है। तो उन्होंने बताया कि हमारा कार्य भी जो भी है वो परमात्मा ही चला रहा है, इसलिए हम उनकी शुभ भावना के कई सुंदर वक्तव्य किया है, उसके लिए मैं अपने राजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। अपना विशेष अनमोल समय निकाल कर ये अपने खास इस सभा में आए हैं। और इसके बाद अंगराज मोहन जी जो सीपीओ नॉर्थन रेलवे दिल्ली के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी ग्रीटिंग दी। उन्होंने बताया कि हम स्टाफ के लिए बहुत अच्छी रीति से मेडिटेशन के प्रयोग योग करेंगे, और इसी हिसाब से अंगराज मोहन जी को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं अपनी गुड विशेस देने के लिए। और विशेष करके संगीता बेन जी ने जो शेरों शायरियों के द्वारा हम लोग को नवाजा है, और हर शायरी के पीछे एक सुंदर मैसेज आध्यात्मिक छुपा था, और इतनी सुंदर रीति से मंच का संचालन किया है, मैं संगीताबेन का भी बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, विशेष करके आज बिहाइंड द कर्टन जिन्होंने सेवा की है, जो भाई बहनों ने, ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने आपको निमंत्रण ला करके यहां पहुंचाने का मेहनत प्रसाद किया है, मैं इन सभी भाई बहनों का भी बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करूंगा। और बिहाइंड द कर्टन में बहुत लोग आते हैं, भाई बहन हैं, इन सभी का नाम सहित बहुत दिल से शुक्रिया। सभा में आप सब उपस्थित हो, बहुत भाग्यशाली आत्माएं यहां आ पाती है। आपने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे चलना ही है, कुछ भी हो जाए, तभी आप सब यहां पहुंच पाए हो। ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले महान सौभाग्यशाली आत्मा हो, सभा का श्रृंगार हो आप, तो ऐसी महान आत्माएं को आपको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से सम्मान, शुभ भावना, शुभकामनाएं और परमात्मा की दुआएं स्वीकार हो। ओम शांति।
और हम सब का आभार व्यक्त करने वाले अनिल भाई का भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इतनी कम तालियों से काम नहीं चलेगा, जिन्होंने लगातार इतना आभार सभी के लिए व्यक्त किया, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और अब कुंती बहन जी कुछ आवश्यक सूचनाएं हम सभी के बीच रखेंगे, उसके पश्चात भी कुछ क्षण के लिए आप भाई बहने यहां पर बैठे रहेंगे, जैसे पहले आपको कहा।